الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورة التطفیف کا ترجمہ اور لفظی تحقیق تھوڑی بہت ہم نے کر کے مکمل کر لیا تھا، اس کے بعد خلاصہ تفسیر شروع کر رہے ہیں. آج فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، ناپنے اور تولنا اور تولنے میں. ٹھیک ہے، ناپنے کا مطلب ہوتا ہے میجر کرنا، جیسے یعنی انچ اسکیل سے، انچ ٹیپ سے میجر کرتے ہیں یا اسکیل سے میجر کرتے ہیں، اور تولنے کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا. تو ان دونوں میں جو کمی کرنے والے لوگ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ الذین اذک تالو، ٹھیک ہے، تو ایک تالو کا لفظ استعمال کیا خالی یہاں پر کہ معاف کر لیں، اور وزنوہم کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال نہیں کیا دوسری آیت کے اندر، جبکہ تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کالوہم او وزنوہم دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی دوسری آیت میں صرف ناپنے کا لفظ استعمال کیا، اور تیسری آیت میں ناپنے اور تولنے دونوں کا لفظ استعمال کیا. تو فرمایا کہ یعنی اب اس کی تفسیر بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا کہ بھائی کیوں ایسا کیا، ایک جگہ صرف ناپنے کا لفظ، دوسری جگہ ناپنے تولنے دونوں کا لفظ استعمال کیا. تو اس کی تفسیر میں یہاں تھوڑا لکھا ہے، اور پھر معارف و مسائل میں بھی مزید آتا ہے کہ گو لوگوں سے اپنا حق پورا لینا مذموم نہیں ہے. یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہوں تو اب آپ اس میں بڑے پرٹیکولر رہیں کہ جی مجھے پورا پورا دو، جتنا میں نے پیمنٹ کری ہے مجھے اتنا چاہیے، تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. مگر اس کے ذکر کرنے سے مقصود خود اس پر مذمت کرنا نہیں ہے کہ لوگوں سے اپنا حق پورا لینا بری بات ہے، نہیں، بلکہ کم دینے پر مذمت کی تاکید و تقویت ہے. یعنی کم دینا اگرچہ فی نفس ہی مذموم ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی سے پیمنٹ پوری لے لینا لیکن اس کو مال پورا نہ دینا، تو یہ فی نفس ہی تو مضموم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر دوسروں کی ذرا رعایت نہ کی جائے تو یہ اور زیادہ مضموم ہو جاتا ہے. یعنی اپنا حق پورا لینا لیکن دوسرے کا حق پورا نہ دینا. اب ایک شخص ہے جو کہ اگر دوسروں کو حق پورا نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو یہ برا کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نا دوسروں کے ساتھ بھی نرمی رکھتا ہے کہ بھائی دوسروں سے بھی جب لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی اتنی سختی نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی اگر کمی کوتاہی کرتے ہیں تو ان کو درگزر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر اس کی برائی کے اندر تھوڑی سی یعنی نرمی آ گئی نا، کیونکہ اب یہ دونوں طرف ہی ایسا ہے، نہ دوسروں کو حق پورا دیتا ہے اور نہ دوسروں سے حق پورا ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہے، تجارت میں نہیں، تجارت میں تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن عام معاملات کے اندر نا ہم سے یہ، کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے ناپنے تولنے کا کانسیپٹ، یہ صرف تجارت کے لیول پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے آتا ہے معاشرہ مسائل میں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اوور آل حقوق کے ساتھ بھی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر گھر کے اندر بیوی اور شوہر کے درمیان حقوق ہوتے ہیں، تو اب ایک شوہر جو ہے وہ بیوی سے بیوی کو اس کا حق پورا ادا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ بیوی سے اپنا حق بھی پورا ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے نا کہ اے اللہ میں بیوی کو پورا حق نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اگرچہ کہ پورا حق دینے پہ قادر نہیں ہوں یا مجھ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، میں جو ہوں وہ یعنی اتنا اچھا نہیں بن سک رہا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس سے بھی پورا حق ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، تو اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نرمی کی امید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، امید یہی ہے کہ جو شخص ڈر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے معافی مانگتا ہے اور اپنے کیس کو اس طرح پریزنٹ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت یعنی وسیع ہے ہر چیز کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اس شوہر کا کیا کیا جائے بھائی، کہ جو کہ بیوی کو حق تو نہ دے اس کا یا کم کر کے دے، لیکن بیوی سے جب ڈیمانڈ کرنے کی باری آئے तो पूरा पूरा हक मांगे उससे, जरा बराबर भी इधर से उधर हो जाए तो बीवी की जो है वो खाल उधेड़ दे, या बीवी को जो है वो डांटना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी खराब कर दे, उसका ससुराल जाना, उसका महके जाना जो है वो बंद करा दे कि तुमने मेरा हक क्यों नहीं दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा हक नहीं दिया, राइट? तो ये शख्स जो है ना फिर ये जालिम कहलाएगा और इसको जुल्म वाली सजा होगी, जालिम वाली सजा होगी, जो कि आखिरत का इंतजार भी नहीं करती है। बाय द वे, जालिम की सजा आखिरत का इंतजार नहीं करती, जालिम को इसी दुनिया में अल्लाह ताला सजा देते हैं। तो ऐसे शौहर को फिर इसी दुनिया के अंदर सजा मिलती है। कैसे मिलती है, उमूमी तौर पर कैसे मिलती है जी, जरा बताएंगे कोई? काफी सारे शौहर मौजूद हैं क्लास में, पता होना चाहिए ना कि अगर इस तरह का जुल्म करेंगे तो दुनिया में कैसे सजा मिलती है फिर उमूमी तौर पर? जी कैसे मिलती है सजा ऐसे शौहरों को? कोई और हम पर जुल्म करता है उमूमी तौर पर, ये तो किसी को भी अल्लाह ताला हाँ कर देते हैं। यूजुअली ऐसे लोगों को ऐसा भी होता है कि दफ्तर में ना इनका बॉस उनको जलील करता है, इनके ऊपर जुल्म करता है, ठीक है, क्योंकि घर में ये बीवी पर जुल्म करते हैं ना, तो बॉस फिर इनको दफ्तर में इनके ऊपर जुल्म करता है, हर वक्त परेशान रहते हैं। नहीं चले, ये सब तो है, लेकिन उमूमी तौर पर ना ऐसे शोहर को कब सजा मिलती है? आगे चलकर बेगैर हो जाते हैं, आगे चलकर बेगैर हो जाते हैं। बेगैर का क्या मतलब? बच्चों के जरिए से, हाँ ठीक है, बच्चों ओल्ड एज में जब ये बूढ़ा होता है ना ये शौहर, तो फिर क्या होता है, बच्चे माँ की तरफ हो जाते हैं और फिर दोनों मिल करके इसकी बीवी भी और इसके बच्चे भी फिर इसको सजा देते हैं, ठीक है। तो ये सजा फिर बुढ़ापे में मिलती है, मरने से पहले मिलती है, आखिरत से पहले मिलती है ऐसे शख्स को सजा, ठीक है। तो ये जुल्म की सजा इस शक्ल में इस दुनिया के अंदर में मिल जाती है। तो ये मामला क्या होता है कि अपना अपनी तरफ से तो हक नहीं अदा कर रहा, लेकिन दूसरे पर पूरी डिमांड करता है, छोड़ता नहीं है बीवी के एक छोटी सी भी गलती को, ठीक है। तो आगे फरमाया कि लेकिन इसके साथ अगर दूसरों की जरा रियायत ना की जाए तो और ज्यादा मजमूम है, बखिलाफ रियायत करने वाले के अगर इसमें ऐब है तो एक हुनर भी तो है, हुनर का मतलब एक अच्छाई भी तो है, इसलिए अव्वल शख्स का ऐब अशद है, और चूंकि असल मकसूद मजम्मत है कम देने की, इसलिए इसमें नाप और तोल दोनों का जिक्र किया ताकि खूब तसरीह हो जाए कि नापने में भी कम देते हैं और तोलने में भी कम देते हैं, ठीक है। इसलिए कि मजम्मत जो है वो कम लेने की तो नहीं करना ना यहाँ पर मकसूद, बल्कि मजम्मत करने किस चीज़ की करनी है, कम देने की करनी है। तो इसमें ना नापने और तोलने दोनों का तस्करा करके इसकी मजम्मत को ज्यादा अशद कर दिया, अल्लाह ताला ने ज्यादा शदीद बना दिया दोनों का स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली तस्करा करके, ठीक है। अगर इम्प्लिसिटली तस्करा किया जाता है ना तो उससे इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं बढ़ती बात की, एक्सप्लिसिट तस्करा करने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर आप में से किसी की कोई मेरे पास बुराई आए, ठीक है, अब मैं आपका नाम लिए बगैर अगर पूरे क्लास के अंदर इस बात का तस्करा कर दूं कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, तो अब उसकी इंटेंसिटी तो कम होगी ना उन साहब के ऊपर। लेकिन अगर मैं इस क्लास में उनका नाम लेकर के बयान कर दूं कि मैं तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर उसकी इतनी होगी उनके लिए, बहुत ज्यादा होगी ना। तो एक्सप्लिसिट बात करने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली दोनों बातों का नाम लेकर के तस्करा किया ताकि इंटेंसिटी बढ़ जाए, अशद हो जाए मामला, ठीक है। तो वो फरमाया कि ताकि खूब तसरी हो जाए कि नापने में भी कम देते हैं और तोलने में भी कम देते हैं, और चूंकि पूरा लेना फिर नफ्स ही मदार मजम्मत का नहीं है, यानी पूरा लेना तो कोई मजम्मत वाली बात नहीं है ना, फी नफ्स ही, फी नफ्स ही का मतलब इन इट इन ऑफ इट सेल्फ कोई बुरी बात नहीं है किसी से पूरा अपना हक लेना, इसलिए वहां नाप और तोल दोनों का जिक्र नहीं किया बल्कि एक ही का जिक्र किया, यानी सिर्फ नापने का जिक्र किया। फिर तख्सीस नाप की शायद इसलिए भी हो, ठीक है, नाप अच्छा वहां पर तोलने का जिक्र कर देते, नापने का जिक्र ना करते, तो नापने का क्यों जिक्र किया तोलने का जिक्र नहीं किया? उसकी वजह बता रहे हैं कि शायद इसलिए हो कि अरब में ज्यादा दस्तूर कैल का था, ठीक है, कैल का मतलब होता है मेजर करके देना, ठीक है, जैसे कि यानी आप एक 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 फुट्टे से भी नाप सकते हैं, और आप जो है वो एक सा जिसको कहते हैं, यानी एक छोटा सा बर्तन है कि जी इस एक बर्तन के अंदर ना आपको पता है, आपने मेजर किया हुआ है कि इसके अंदर जो है वो एक लीटर दूध ही आता है। अब ये एक लीटर दूध जो है ना ये वजन नहीं है बल्कि ये मेजर है दूध का, ठीक है। उसी तरीके से यानी ये जो है, यानी आपने जो वो एक एक लीटर का एक कैन बनाया हुआ है उसके अंदर एक लीटर से ज्यादा आते ही नहीं है, तो ये भी एक मेजरमेंट का ही तरीका होगा, ठीक है। तो अरब में ज्यादा दस्तूर जो था ना वो मेजरमेंट का यानी नापने का था, कैल का था, जिसको कैल कहते हैं अरबी में। खुसूसन अगर आयत मदनी हो, जैसे कि रूहुल मानी तफसीर है बहुत मशहूर, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर, तो अगर आयत मदनी हो जैसे कि रूहुल मानी में बरवायत नसई व इब्न माजा व बैहकी, इसका नुजूल अहल मदीना के बाब में लिखा है, तो उस वक्त इस तख़सीस की वजह ज़्यादा जाहिर है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में कैल का दस्तूर मक्का मुकरमा से भी ज़्यादा था। आगे ऐसा करने वालों को डराया गया है। ठीक है, तो अभी आपने शायद नोट किया हो कि दोनों के लफ्ज़ जो हैं यहाँ पर मदीना लिखा हुआ था और मक्का लिखा हुआ था, लेकिन हमने अपने मशायख से एक चीज़ सीखी है कि इन दोनों शहरों की जो अजमत है, तो इस वजह से मदीना के साथ हमेशा मुनव्वरा लगा के बोला जाए और मक्का के साथ हमेशा मुनव्वरा मक्का मुकरमा लगा करके बोला जाए। ठीक है, तो इसको कोशिश करना चाहिए कि इसके ऊपर इस नीयत के साथ अमल करें। अब जाहिर है ये बुजुर्ग बहुत बड़े बुजुर्ग थे और इनको हम इनकी तनकीद नहीं कर रहे कि जी इन्होंने तो नहीं लिखा। ठीक है, इन्होंने नया लिखने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन यानी इसमें इंग बचाना, सफ़ा बचाना और किफ़ायत शायरी करना, ये सारी वजूहत हो सकती हैं पूरा ना लिखने की। ठीक है, तो उलमा की तरफ से ना हमेशा हुज्जत देनी चाहिए, कोई कोई तावील देनी चाहिए कि इन्होंने अगर ये काम नहीं किया जो कि ज़्यादा अफजल काम था, तो इन्होंने ये जो काम नहीं किया तो इनके पास कोई जेन्युइन रीज़न होगा। ठीक है, बिकॉज उलमा का जो मकाम है कुरान और हदीस से वो बहुत बड़ा साबित है, बहुत बड़ा मकाम साबित है। तो अब हमें उनकी जाहिरी तौर पर अगर कोई गलती नजर भी आती है ना, तो हमारा फर्ज है यानी अवामुन नास का फर्ज है कि उनकी तरफ से तावील दी जाए, एक्सप्लेनेशन दी जाए। ठीक है, लेकिन अपने ऊपर वो एक्सप्लेनेशन फिट करने की बजाय अपने आप को ज्यादा यानी करना चाहिए कि हम क्यों नहीं अमल करते इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे तो जुबान की बात है ना, हम कोई कोई रोशनाई को थोड़ी बचा रहे हैं, तो हमारी जुबान से अगर मक्का मुकर्रमा निकल जाए तो हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इसके अंदर, राइट? बल्कि एनर्जी वेस्ट तो नहीं होगी लेकिन सवाब तो मिल जाएगा ना, कि आप अदब की नीयत से मुकर्रमा भी बोल रहे हैं, उसी तरीके से मदीना के साथ आप अदब की नीयत से मुनव्वरा भी बोल रहे हैं, तो आपकी एनर्जी तो कोई वेस्ट नहीं होगी लेकिन आपको सवाब मिल जाएगा इस अदब की वजह से। ठीक है, तो अपने लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, उलमा के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए हमें। ठीक है, हमारा उल्टा मामला है, हम अपने लिए रिलैक्सेशन के स्टैंडर्ड्स रखते हैं और उलमा के लिए टाइट स्टैंडर्ड्स रखते हैं, और उसके ऊपर हुज्जत भी देते हैं कि वो तो आलिम है तो उनके साथ तो टाइट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है ना, ये देते हैं ना हुज्जत, इसका भी जवाब सुन लें। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, टाइट स्टैंडर्ड्स उलमा के लिए, ये बेशक हैं, बेशक हैं, लेकिन ये हमारे करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो टाइट स्टैंडर्ड्स उनके ऊपर फिट किए जाते हैं ना, ये नीचे से फिट नहीं किए जाते हैं, हम नीचे हैं उनके। ठीक है, ये नीचे से अप्लाई नहीं किए जाते हैं, ये अप्लाई किए जाते हैं कहाँ से, ये अप्लाई कहाँ से होते हैं, ऊपर से अप्लाई होते हैं, उलमा के ऊपर जो हैं। ठीक है ना, ऊपर का मामला अलग होता है, नीचे का मामला अलग होता है, हम नीचे हैं उलमा के, हम उनके ऊपर ये जो जो टाइट क्राइटेरिया जो फिट करते हैं ना, ये हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर हम करेंगे तो हमारा बुरा असर होगा। ठीक है, अलबत्ता उनके ऊपर कौन है, उनके ऊपर इस वक्त सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है, क्योंकि नबी तो नहीं है आज के दौर के अंदर। ठीक है, तो उलमा के ऊपर फिर कौन रह जाता है, अल्लाह ताला है। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनके साथ टाइट स्टैंडर्ड रखता है, बेशक रखता है। ठीक है, लेकिन वो अल्लाह के करने का काम है, वो हमारे करने का काम नहीं है। तो लेट्स स्टॉप बीइंग और लेट्स स्टॉप प्लेइंग गॉड, राइट? लेट्स स्टॉप प्लेइंग गॉड। ठीक है, हम अल्लाह का रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। ठीक है, इसके ऊपर हमारे माशाल्लाह रोशन ख्याल लोग कहते हैं ना कि जो तौहीन रिसालत जिसने करी है तो उसको जो सजा देना है, तो हम क्यों सजा देते हैं, तो हम जो है वो अल्लाह वाला काम करें, अल्लाह ताला सजा देगा उसको। ठीक है, तो हम क्यों सजा दे रहे हैं, तो वहां पर हमको जो है ना, लेट्स यानी स्टॉप प्लेइंग गॉड वाली बड़ी फिक्र पड़ जाती है कि वी शुड नॉट प्ले गॉड, यानी वी शुड नॉट पनिश देम। ठीक है ना, अल्लाह विल पनिश देम। ठीक है, तो यही मसला है सारा का सारा। ठीक है, कि जहां पर प्लेइंग गॉड का मसला है, ठीक है, वहां पर तो हमको प्लेइंग गॉड नजर नहीं आता। ठीक है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुछ उसूल बता दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें, जो कि उम्मत ने अप्लाई करने हैं, उम्मत ने लगाने हैं। ठीक है ना, तो जब वहां लगाने की बात आती है तो हम कहते हैं वी शुड नॉट लगाना, वी शुड नॉट प्ले गॉड, वी शुड नॉट पनिश, यानी नॉट दैट वी शुड नॉट प्ले गॉड, वी शुड नॉट पनिश कहते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा काम नहीं है उनको पनिश करना, जो है वो अल्लाह ताला उनको पनिश करेगा। ठीक है भाई, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुम्हें सिखा दिया कि पनिश करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें सारे वो वाकयात जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनिश किया था ना, वो वाकयात तो गोल कर जाते हैं, ठीक है। और जब पनिश नहीं किया था, वो सारे वाकयात जो है वो सारी दुनिया में फैला रहे होते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनिश नहीं किया था, और उसके अंदर बहुत सारी झूठी हदीसें भी शामिल करना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि अभी तो ऐसी हदीसें भी चल रही हैं मार्केट के अंदर जो कि शियाओं की किताबों से ली गई हैं, और शियाओं का क्या हाल है, वो तो सहाबा को वैसे ही नहीं मानते, ठीक है ना, वो तो सहाबा को ही नहीं मानते, तो उनकी हदीसों का क्या एतबार भाई भाई। तो वो हदीसें चल रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनिश नहीं किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनिश नहीं किया था, ठीक है। तो एक इसको कहते हैं ना बिग मेस, राइट, बिग मेस। और वो बिग मेस क्यों है, क्योंकि ये सब नफ्स परस्ती की रीजन है, नफ्स परस्ती के की वजूहत से ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये बिग मेस में हम क्यों लैंड हो गए हैं, नफ्स परस्ती की वजह से लैंड हो गए हैं, बिकॉज हमने बेसिकली किसी की नहीं माननी, किसी की भी नहीं माननी, ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की माननी है, इस वजह से वी आर इन अ बिग मेस, दिस इज द ओनली रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा की बात हो रही है, तो हम उलमा के ऊपर टाइट स्टैंडर्ड्स रखने के बजाय हम अपने ऊपर टाइट स्टैंडर्ड्स रखें, उलमा पे टाइट स्टैंडर्ड्स रखने हैं, तो वो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है, ही विल डू इट, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। और उसकी बहुत सारी फिर कुरानी दलीलें भी दी जा सकती हैं, लेकिन अभी फिर और ज़्यादा तबीर हो जाएगा मामला। चलिए फिर आगे चलते हैं कि क्या उन लोगों को इसका यकीन नहीं है कि वो एक बड़े सख्त दिन में जिंदा करके उठाए जाएंगे, जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, ठीक है। तो ये जो नाप तोल के अंदर कमी करते हैं, अपना हक पूरा लेते हैं, दूसरों का हक नहीं देते, तो अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या उनको पता नहीं है कि वो उठाए जाएंगे। अच्छा, उनको पता नहीं है, क्या उन्होंने कभी किसी को देखा है कयामत के दिन उठते हुए, तो पता नहीं का क्या मतलब है कि उनको पता नहीं है इस बात का, ठीक है, या उन्होंने गुमान कर रखा है कि वो नहीं उठाए जाएंगे, ठीक है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं लोगों को उठते हुए कयामत के दिन, तो पता उनको कैसे चलता, ठीक है। तो अल्लाह ताला डिमांड क्या करते हैं कि नबी ने तो बताया है ना मेरे आकर के तुम्हें कि लोगों को उठाया जाएगा, तो नबी का बताना तुम्हारे लिए ऐसे ही है कि जैसे कि तुम्हें इल्म है इस बात का पहले से, यानी एज इफ के यू आर सपोज टू नो दिस, ठीक है, नबी तुमने ने तुम्हें बता दिया, एज इफ यू हैव सीन इट, एज इफ तुमने देखा है के लोग उठाए जाएंगे कयामत के दिन, ठीक है। तो नबी का बताना जो है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको अल्लाह ताला जब बतला देते हैं किसी को नबी के जरिए से, फिर अल्लाह ताला की डिमांड ये होती है कि अब वो बंदा माने इस बात को, और ऐसे ही माने जैसे कि वो खुद देख रहा है इस बात को। वैसे भी कयामत के बारे में तो अल्लाह ताला ईमान पे वो नहीं करते, इक्तफा नहीं करते अल्लाह ताला, ठीक है, आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ईमान पर इक्तफा नहीं करते। फिर किस चीज़ पर इक्तफा करते हैं भाई, ईमान ही तो हमने सुना था कि अल्लाह ताला को चाहिए, फिर किस चीज़ पर इक्तफा करते हैं आखिरत के लिए। जी जरा इसका जवाब दे दें तो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला फिर क्या क्या डिमांड करते हैं आखिरत के बारे में, अगर ईमान काफ़ी नहीं है तो फिर क्या चाहिए भाई, जान लोगे, कहते हैं ना कराची में, क्या जान लोगे भाई मेरी, अमल नहीं। सही जवाब देना जी, माशाल्लाह 18 लोग हैं, सही जवाब दें, ईमान पर अल्लाह ताला अतात, नहीं अतात और अमल तो बने एक ही चीज होती है, नहीं आखिरत के मामले के अंदर बताएं ईमान काफी नहीं है। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن رَّبِّكَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, ठीक है, यकीन रखते हैं आखिरत के ऊपर। शेर साहब साहब ने सही जवाब दिया है, अल्लाह ताला बाकी मामलात में ईमान पे राजी हो जाते हैं, और आखिरत के अंदर यकीन की डिमांड करते हैं। यकीन, यकीन ईमान से ऊपर दर्जे की एक चीज़ को कहते हैं, और यकीन जो होता है ये मुशाहिदे से आता है, जब तक मुशाहिदा ना हो ना, मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन ना हो, उस वक्त तक यकीन नहीं आता। तो आखिरत के मामले में अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुमसे यकीन की डिमांड करता हूँ, एज इफ यू हैव सीन इट, हालांकि वी हैव नॉट सीन इट एंड वी कैन नेवर सी इट, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे मामलात हमारे सामने चलाते हैं जिससे कि हमें मुशाहिदा हो जाता है, मिल जाता है ये जजा और सजा का, ठीक है। फिर अल्लाह ताला हमसे डिमांड करते हैं आखिरत के मामले में यकीन रखो, फकत ईमान काफी नहीं है। ईमान क्या चीज होता है? ईमान होता है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान से इकरार कर लेना और दिल से तस्दीक कर देना, ये ईमान होता है, ठीक है। लेकिन यकीन ये नहीं होता। यकीन होता है बहुत सॉलिड, सिर्फ जुबान से इकरार कर लेना और दिल से तस्दीक कर देना यकीन नहीं होता है, वो ईमान होता है, ठीक है। तो ये फरमा रहे हैं कि क्या इन लोगों को इसका यकीन नहीं है कि वो एक बड़े सख्त दिन में जिंदा करके उठाए जाएंगे, जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यानी उस रोज से डरना चाहिए और तदफीफ यानी लोगों की हक तलफी से तौबा करनी चाहिए। इस बास व जजा को सुनकर जो मोमिन थे वो डर गए, यानी ईमान वाले ना फिर इस बात को सुन करके डर जाते हैं, यानी उनको फिर यकीन का दर्जा मिल जाता है, डर जाते हैं। लेकिन जो ईमान वाले भी नहीं थे, यानी जिनके पास मिनिमम दर्जा इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब का नहीं था, यानी जिन्होंने मान के नहीं दी थी, वो कहलाते हैं काफिर, तो वो इनकार करने लगे इस बात को सुन करके। इसलिए आगे इनकार पर तंबीह फरमाकर फरीकैन की जजा की तफसील फरमाते हैं कि जैसा कुफार लोग जजा और सजा के मुनकिर हैं, हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि जजा और सजा तो जरूरी और वकू है। जिन आमाल पर जजा सजा होगी वो भी मुनजबित और महफूज हैं। और इस मजमूए का बयान ये है कि ठीक है, अब ये बयान यानी बयान का मतलब होता है तफसील, अब आगे इसकी तफसील आ रही है जजा और सजा की, ठीक है। तो मुशाहदे हमारे पास अल्लाह ताला दुनिया के अंदर करवाते रहते हैं, अपने मुल्क में देख लें, खाली पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में चले ना देखें, पाकिस्तान में देख लें, हैं एक हुकूमत आती है और हुकूमत आकर के जो है वो ऊट पटांग की हरकतें करती है, फिर उसको सजा जो है वो इस दुनिया में ही मिल जाती है। जलील और रुस्वा होते हैं, किसी को फांसी लगना पड़ता है, किसी को किसी तरीके से जाना पड़ता है, राइट, किसी को जो है वो जेल हो जाती है, किसी को जो है वो यानी किसी तरीके से जलील खार होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला मुशाहदा करवा रहे हैं ना, जजा और सजा की एक छोटी सी शक्ल का मुशाहदा अल्लाह ताला इस दुनिया में मुस्तकिल करवा रहे हैं हमें, राइट। और सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह के मामला चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को मुशाहदा कहते हैं कि अकल की रत्ती लेकर के अगर इन चीज़ों को आप देखें तो आखिरत पर यकीन आ जाता है, लेकिन अगर अकल इस्तेमाल करके देखें, वरना फिर क्या होता है, वही अगली हुकूमत आती है फिर वही सारे काम करना शुरू करती है पिछली ने किए थे, और उसकी जजा और सजा से कोई सबक नहीं हासिल करती, ठीक है। अब इसका मतलब ये कोई थोड़ी है कि जी मुशाहदा के लिए उसके पास चीज़ थी नहीं, लेकिन आंखें बंद कर ले तो भाई क्या करें ऐसे बंदे का जो आंखें बंद करके आगे चले। तो फरमाया कि हर किस ऐसा नहीं है, बल्कि जजा और सजा ज़रूरी और वकू है। जिन आमाल पर जजा सजा होगी वो भी मुनजबत यानी बहुत ही मजबूत हैं, मुनजबत हैं। और इस मजमू का बयान यानी इसकी तफसील ये है कि बदकार यानी काफिर लोगों का नाम अमल सिज्जीन में रहेगा। सिज्जीन क्या है जी? वो एक मुकाम सातवीं ज़मीन में है, जो मुकाम है अरवाह कुफार का, ठीक है। यानी ज़मीन के सात दर्जे हैं जैसे आसमान के सात दर्जे हैं, ठीक है। तो ज़मीन जो है वो निचली जगह को कहते हैं, यानी हमारे नीचे की जगह, ठीक है। अब निचली का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्युटली निचली जगह, बिकॉज अगर आप स्पेस के कॉन्टेक्स में देखें तो ज़मीन निचली जगह तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे कॉन्टेक्स में देखें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कॉन्टेक्चुअल, ठीक है ना, सब कुछ कॉन्टेक्चुअल होता है कि डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, ठीक है, कहाँ पर आप हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट से क्या चीज़ आप पर अप्लाई हो रही है, इस पे डिपेंड करता है सब कुछ। एब्सोल्युटली आप चीज़ों को नहीं देखते, ठीक है, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली नहीं देख सकते सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात एब्सोल्यूट है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज़ रेलेवेंट, ठीक है। तो ज़मीन की जो नीचे की जो ये जो है ना, नीचे की सात जो लेयर्स हैं ये रिलेटेड टू अस हैं, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में हमारे नीचे के जब जिस मुल्क में भी है, ठीक है, हमारे नीचे के सेवन लेयर्स। लेकिन इस ज़मीन के ऑपोजिट साइड पे चले जाएं, सऊदी अरब के ऑपोजिट में कैलिफोर्निया का गालबन स्टेट पड़ती है, यूनाइटेड स्टेट्स की थी। कैलिफोर्निया वालों के लिए ज़मीन क्या है? वो उनके नीचे जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सातवीं ज़मीन में है, जो मुकाम है अरवाह कुफार का। तो कज़ा फ़ि तफ़सीर इब्न كثير عن كعب وفي الدر المنثور عن ابن عباس رضوان ومجاهد وفرقد وقتاده وعبد الله ابن عمر رضوان مرفوعا, ठीक है। तो ये यानी मरफू हदीसों से ये बात साबित है कि सज्जीन जो है वो सातवीं जमीन के अंदर है। अच्छा, कुफार के अमाल का इस मुकाम पर रहना भी मुजाहिद व अब्दुल्ला इबन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से दुर्र मंसूर में मनकूल है, ठीक है। तो कुफार के अमाल यानी कुफार के जो नाम है अमाल होता है वो सज्जीन के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अब आगे डराने के लिए सवाल है कि और आपको कुछ मालूम है कि सिज्जीन में रखा हुआ नाम अमल क्या चीज़ है? वो एक निशान किया हुआ दफ्तर है। निशान से मुराद मोहर है। कमा फि दुर मंसूर अन काब अल अखबार फजख्तिमु व यूज़ाउ अई बाद अल मौत। मकसूद यह होगा कि इसमें तगैर व तब्दील का कुछ एहतमाल नहीं है, बस हासिल इसका अमाल का महफूज होना है जिससे जजा का बहक होना साबित हुआ। आगे इन अमाल की जजा का बयान है। ठीक है, अब यहाँ पर मकतूब और दफ्तर, ठीक है, अब यहाँ पर रिसेंटली जो लोग आते हैं मजालिस के अंदर सुनते हैं, और फिर उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाद में भी बैठते हैं, तो बाद में बैठने वालों के साथ फिर और तफसीली कुछ बातें होती हैं, सवाल करते हैं लोग, जवाब देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट जरा ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो तकदीर वाला मामला है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, सिज्जीन के अंदर इनके नाम अमाल मकतूब हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये लिखे हुए का क्या मतलब होता है, और इससे जो हमारे जहन में जो इश्कालात आते हैं, तो इन इश्कालात का क्या जवाब है। ठीक है, तो ये सारी तफसीलात जो हैं वो तकदीर के मौजू के तहत हम पिछले 2 हफ्तों से अच्छी खासी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को सवाल हो अभी भी तो वो पूछ सकते हैं, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो बैठ सकता हो आकर के और सारी बातें सुनी हुई हो पहले से। कम से कम इस क्लास में तो आए हैं ना, तो इस वजह से आपको इसका बेनिफिट देते हैं कि आप फिर से भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिजीन के अंदर ना रखा हुआ नाम है अमाल, क्या चीज़ है वो, एक निशान किया हुआ यानी मोहर लगाया हुआ एक स्टैम्प्ड किस्म का एक क्लोज्ड जो है वो दफ्तर है। दफ्तर मीनिंग रिकॉर्ड। दफ्तर का मतलब ये नहीं कि ऑफिस बिल्डिंग उसके अंदर कमरे और ये उसके अंदर फर्नीचर, और ये दफ्तर नहीं, बल्कि दफ्तर का मतलब है रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है और निशान से मुराद ये मुहर है। ठीक है, और फिर उसका उन्होंने एक यानी रेफरेंस भी दे दिया है कि दुरुल मंसूर में काब अखबार रज़ी अल्लाह अन से ये बात मनकूल है। तो फरमाया कि अई बादल मौत, मकसूद ये होगा यानी यूज़ हो अई बादल मौत, अच्छा, जबकि इसको जो है वो यानी खोला जाएगा मौत के बाद, यानी ये जो दफ्तर बंद है ना, तो ये दफ्तर खुलेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो जो भी ताला वगैरह जिस शक्ल में भी लगा हुआ है, तो ये ताला कब खुलेगा, ये मौत के बाद खुलेगा यानी कयामत के दिन खुलेगा। तो मकसूद ये होगा कि इसमें तगैर तब्दील का एहतमाल नहीं है, बस हासिल इसका आमाल का महफूज होना है जिससे जजा का बहक होना साबित हुआ। आगे इन आमाल की जजा का बयान है कि उस रोज़ यानी क़यामत के रोज़ छुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी जो कि रोज़ जजा को छुटलाते हैं, और इस यौम जजा को तो वही शख्स छुटलाता है जो हद अब्दियत से गुजरने वाला मुजरिम हो। ठीक है, यानी अब्दियत के अल्लाह ने जो लिमिट्स डिफाइन कर दी हैं कि इन बाउंड्रीज के अंदर जो तुम काम करते हो ये अब्दियत में है, और इन बाउंड्रीज के बाहर जो तुम काम करोगे तो वो अब्दियत में नहीं है। मिसाल के तौर पर तुम एक मशरूब पीते हो, ठीक है, अब वो मशरूब अगर रूह अफ़ज़ा है या जामे शीरी है या पानी है या दूध है, ठीक है, तो वो हक़ अब्दियत के अंदर कहलाएगा। लेकिन अगर मशरूब खमर वाला मशरूब हो जाए, ठीक है, तो वो यानी जिसको के शराब कहते हैं आम वर्ड्स में, तो वो जो है हक़ अब्दियत के दायरे के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की लिमिट्स हैं। तो जो झुटलाने वाला होता है वो हद अब्दियत से, वो हद अब्दियत से गुजरने वाला होता है, मुजरिम हो, और जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो यूँ कह देता है कि ये तो बेसनद बातें अगलों से मनकूल चली आ रही हैं, ये तो मौलवियों की बातें हैं। ठीक है, ये तो दफियानूसी बातें हैं, बोरिंग बातें हैं, और इस तरह की बातें कहता है। ठीक है, असातीरुल अव्वलीन कहता है, मतलब ये बतलाता है कि जो शख्स ये मतलब ये बतलाना है कि जो शख्स रोज़े क़यामत की तकज़ीब करता है यानी झूठा कहता है रोज़े क़यामत को, वो मोतदी असीम और मुकज़्ज़ब बिल कुरआन है। ठीक है, यानी कुरआन उसकी तकज़ीब करता है, ऐसा है वो। आगे तकज़ीब मोतदी यानी एतदाल से बाहर निकल जाने वाला, हद से बाहर निकल जाने वाला। ठीक है, असीम मानी इसम करने वाला, इसम गुनाह को कहते हैं, और मुकज़्ज़ब बिल कुरान यानी कुरान उसकी तकज़ीब करता है, यानी कुरान कहता है कि वो झूठा है, तो मुकज़्ज़ब बिल कुरान भी है वो शख्स। आगे तकज़ीब रोज़े जज़ा पर जो सराहतन मज़कूर है, तंबीह की गई है कि ये लोग इसको गलत समझ रहे हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है, और किसी को ये शुबा ना हो कि शायद इनके पास कोई दलील नफ़ी की होगी जिससे ये इस्तदलाल करते होंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक ठीक है, कि शायद किसी को ये शुबा हो ना कि जी ये जो नफी करते हैं रोजे जला की, तो शायद उनके पास कोई दलील होगी नफी करने की, ठीक है, लॉजिकल दलील होगी या कोई नकली दलील होगी, अकली या नकली दो ही किस्म की दलील होती हैं, तो उनके पास किसी ना किसी तरह की कोई दलील होगी जिससे ये इस्तदलाल करते होंगे, यानी ये पॉइंट बयान करते होंगे कि आखिरत नहीं है, हरगिज नहीं, ठीक है, हरगिज नहीं, बल्कि असल वजह तकजीब की ये है कि इनके दिलों पर उनके आमाले बद का जंग बैठ गया है, ठीक है, असल वजह क्या है कि इनके दिलों के ऊपर कल्ला बल राना अला कुलूबहिम मा कानू यक्सिबून, ठीक है, तो अल्लाह ताला इनकी इस बात का ना, यानी ये लोग जो कहते हैं काला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने पुराने लोगों की बातें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं कल्ला, बल्कि अब बल्कि के बाद एक सकता आता है, सकते का एक्चुअली मैं रीजन एग्जैक्टली किताब में नहीं देख सका अभी तक, लेकिन बल्कि के बाद अल्लाह ताला एक डिफरेंट बात बयान फरमा रहे हैं जो कि इसी जुमले का हिस्सा है, ठीक है, यानी ये यही आयत है, लेकिन इसी आयत के अंदर ना एक चीज की नफी करके फिर एक अगली बात बयान फरमा रहे हैं, वो क्या है, राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि इनके दिलों के ऊपर जंग बैठ गया है इस वजह से जो के वो कमाते हैं, यानी जो गुनाह और बदअमाल वो कमाते हैं, ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि इनके दिलों पर उनके अमाल बद का जंग बैठ गया है। रान का लफ्ज जो है वो जंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो दिल के ऊपर जंग का बैठना है, ये जंग किस शक्ल का जंग होता है, ये उस शक्ल का जंग तो नहीं होता जिस शक्ल का जंग लोहे के ऊपर, यानी लोहे के ऊपर लगता है, ठीक है, बिकॉज लोहे का जंग जो है वो लोहे से ही अखज होता है, ठीक है, यानी वो एक अलग किस्म का जंग होता है जो कि लोहे पर लगता है, तो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जो जंग है वो, अब जंग जो है वो उस चीज के हिसाब से होता है ना, ठीक है, लोहे का जंग जो है वो हम उससे आमतौर पर वाकिफ हैं, लेकिन अगर किसी और चीज के ऊपर मैल जम जाती है तो वो मैल जो होती है वो भी जंग का ही काम दे रही होती है, ठीक है, जिससे कि वो चीज जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है, उसकी सलाहियत जो है वो मुतासिर हो जाती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से कल्ब का जो जंग है वो जंग लोहे के जंग से मुख्तलिफ होगा, बिकॉज वो कल्ब का जंग है, और वो ऐसा जंग होगा कि जिससे कि कल्ब की सलाहियत मुतासर हो जाए, कल्ब जो है वो खराब हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से जो काफिर का ये जो फिजिकल हार्ट सर्जन खोल के देखते हैं तो उसके ऊपर उनको कोई जंग वंग नजर नहीं आता, इसलिए कि वो जो हार्ट है वो फिजिकल हार्ट है, वो यानी उसके ऊपर ये वाला रूहानी जंग नहीं जम सकता, बिकॉज रूहानी जंग का ताल्लुक जो है वो रूहानी हार्ट के साथ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला जिस हार्ट की बात कर रहे हैं ये रूहानी कल्ब है, ये फिजिकल हार्ट नहीं है, ठीक है, तो इनके दिलों पर उनके आमाल बद का जंग बैठ गया जिससे इस्तेदाद कबूल हक की फासिद हो गई, इसलिए बराह इनाद इनकार करने लगे, ठीक है, यानी ये जो इनकार करते हैं ये इनाद की वजह से, नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी की वजह से इनकार करते हैं, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम तो इस दौरे जमाने में नहीं है ना, तो इस दौरे जमाने में कौन लोग हैं, जैसे कि इस जुमे को आयत भी आपके सामने रखी थी कि उलुल अम्र मिन हो, ठीक है, तुम्हारे दरमियान जो उलुल अम्र है जो कि तफसीर के मुताबिक फुकहा होते हैं, उलमा होते हैं उस जमाने के उलमा, ठीक है, आज से 100 साल पहले वाले उलमा नहीं, आज से 50 साल पहले वाले उलमा नहीं, इस जमाने के जो जिंदा उलमा होते हैं जो कि इस जमाने के इशूज में और हालात में इस्तिंबात करके आपको जवाब देते हैं, ठीक है, तो ये जो इनकार करते हैं मसलों के अंदर ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया और कुरान में ऐसे आता है, तो ये असल में क्या कर रहे होते हैं, ये इस जमाने के उलमा से इनाद की वजह से ऐसा काम कर रहे होते हैं, इस वजह से नहीं कि ये कन्विंस हैं कि जी हाँ ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि इनाद की वजह से, जिसमें कि उमूमी तौर पर ये जो सो कॉल्ड लिबरल, बल्कि एक्चुअली उनके लिए दखलानूस का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सो कॉल्ड लिबरल कहलाते हैं, तो जिनको कि आजकल के दौर में लिबरल कहा जाता है, या जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो भी अपना अपने आप को ये कहते हैं, तो ये बराह इनाद ये इनकार कर रहे होते हैं, वरना इनके पास कोई कन्विंसिंग दलील नहीं होती है इनकार करने की, उलमा का इनकार करने की कन्विंसिंग दलील नहीं होती है इनके पास, इसलिए बराह इनाद इनकार करने लगे। आगे फिर इनकार पर जजर है, जजर मीनिंग डांट, ठीक है, अल्लाह ताला भी डांटते हैं और अल्लाह ताला के ने फिर जिन लोगों को काम लगाया है तो उनको भी इसलाह करने के लिए, अपने लोगों की इसलाह करने के लिए उनको डांटना पड़ता है, ठीक है, गैरों के साथ डांटने का मामला नहीं होता, ठीक है, ये भी एक उसूल है, गैरों के साथ यानी जो ना मानने वाले लोग होते हैं ना उनको कोई नहीं जाकर डांटता और डांटना चाहिए भी नहीं, ठीक ठीक है, लेकिन जो अपने होते हैं ना उनको डांटना पड़ता है, और ये डांट जो है वो अल्लाह ताला भी अपनों को डांटते भी हैं, ठीक है, अपनों को डांटते हैं। यहाँ पर जो डांट है ये तो कुफार गैरों को डांटना है ना, लेकिन अल्लाह ताला तो ये काम कर सकते हैं, बिकॉज अल्लाह को, अल्लाह के पास ही अथॉरिटी है, ठीक है। लेकिन अल्लाह के नबी भी जो है ना वो गैरों को नहीं डांटते थे, इल्ला माशाल्लाह कभी कभी, ठीक है, अपनों को डांटते थे। उसी तरीके से जो नबी, नबियों के वरसा होते हैं तो फिर वो अपनों को डांटते हैं, ठीक है, और उसकी मकसद जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलाह और खैर ख्वाही होती है, उसका मकसद किसी को जलील करना बिल्कुल भी नहीं होता। तो आगे फिर इनकार पर जजर है, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर डांट रहे हैं कि जैसा ये लोग समझ रहे हैं हरगिज ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर तो आगे बैल की कुछ तफसील है कि वो खराबी है कि ये लोग उस रोज एक तो अपने रब का दीदार देखने से रोक दिए जाएंगे, फिर इसी पर इक्तफा नहीं होगा बल्कि ये दोजख में दाखिल होंगे, फिर उनसे कहा जाएगा कि यही है जिसको तुम छुटलाया करते थे। अब ये दीदार वाला जो मसला है ये आगे मारूफ मसाइल में इसकी बड़ी बड़ी एक अहम तफसील है, हम वहीं पर इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। तो फिर उनसे कहा जाएगा कि यही है जिसको तुम झुठलाया करते थे, और चूंकि ये लोग यौम दीन की तकजीब में जिस तरह अपनी सजा को झुठलाते थे इसी तरह मोमिनीन की सजा को भी, की जजा को भी झुठलाते थे। आगे इस पर तंबीह फरमाते हैं कि ये जो मोमिनीन के अजर व सवाब के मुनकिर हैं हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि उनका अजर व सवाब जरूर होने वाला है, जिसका बयान ये है कि नेक लोगों का नाम आमाल इलीजीन में रहेगा, ठीक है। तो ये मोमिनीन की जजा की बात शुरू हो गई कि नेक लोग जो हैं उनका नाम आमाल इलीजीन में होगा, वो इलीन एक मुकाम है सातवें आसमान में जो मुस्तकर है, यानी बेस है, मुस्तकर मीनिंग ठहरने की जगह, करार की जगह, ठीक है। तो मुस्तकर है अरवाह मोमिनीन का, मोमिनीन की रूहें वहां पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करनी है भाई, यहाँ पर जो रूहें हैं उनका आगे तस्करा आएगा इंशाल्लाह। तो सातवें आसमान में जो मुस्तकर है अरवाह मोमिनीन का, कजाफी तफसीर इब्न कसीर अनकार रजी तआला, और आगे तफहीम सॉरी यानी तफहीम के लिए, यानी उसके मजीद एक्चुअली हा के साथ है, खैर जो भी इसका मतलब है, आगे तफहीम, तफहीम के लिए सवाल है कि आपको कुछ मालूम है कि इल्लीयीन में रखा हुआ नाम अमल क्या चीज़ है? तो वो एक निशान किया हुआ दफ्तर है जिसको मुकर्रब फरिश्ते शौक से देखते हैं, ठीक है। किताबु मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून, यानी मुकर्रब फरिश्ते उस दफ्तर को शौक से देखते हैं, यानी ये कितनी अच्छी चीज़ है, इतनी पाकीज़ा चीज़ है कि अल्लाह ताला के करीब रहने वाले फरिश्ते, मुकर्रब से मुराद ये नहीं कि दूसरे फरिश्ते जो हैं वो नाऊज़ बिल्लाह मकबूज़ फरिश्ते होते हैं, नहीं, बल्कि फिजिकली क्लोज, अल्लाह ताला के फिजिकली क्लोज जो करीब जो फरिश्ते हैं ना उनको यहाँ पर मुकर्रब फरिश्ते करार दिया गया, क्योंकि ये वो फरिश्ते हैं जो कि सातवें आसमान पर होते हैं, और ये इलियीन सातवें आसमान पर ही है, ठीक है। तो उसके करीब भी हैं और सातवें आसमान के ऊपर ही फिर अर्श भी है, तो ये अल्लाह ताला के भी करीब हो। तो इस तरह के तरीके से ये वाले जो फरिश्ते हैं ये फिर फिजिकली मुकर्रब फरिश्ते हैं, ठीक है। तो ये इलियीन में इन मोमिनीन के नाम अमाल को शौक से देखते हैं, और ये मोमिन का बहुत बड़ा इकराम है, जैसे कि रूहुल मानी में बतखरीज अब्द बिन हमैद हजरत काब रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि जब मलाइका मोमिन की रूह को कब्ज करके ले जाते हैं तो हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसके साथ होते जाते हैं, यहाँ तक कि सातवें आसमान तक पहुँच कर उस रूह को रख देते हैं। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हम इसका नाम अमाल देखना चाहते हैं, चुनाचे वो नाम अमल खोल कर दिखलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि वो शादी, शादी में होता है ना कि जहेज आता है, ठीक है। तो अब जब दुल्हन जहेज लेकर के आती है, ठीक है, तो अब एक तो दुल्हन को बड़े इकराम के साथ घर के अंदर लाया जाता है, फिर जो जहेज आता है ना, फिर सारी घर की औरतें जो है वो उस जहेज को देखती हैं कि भाई क्या है जहेज के अंदर, कितना अच्छा जहेज लेकर के आई होगी, माशाल्लाह इनको खुद तो तैयार भी बड़ी अच्छी हैं, बड़े अच्छे तरीके से इनको ब्यूटी पार्लर में जबरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, तो इतना अच्छे से जिन्होंने इनको तैयार किया है तो यकीनन इन्होंने जहेज में भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दी होंगी, तो फिर उस जहेज को देखने की भी तमन्ना रखती हैं औरतें, राइट। अब वो औरतों का अपना मिजाज होता है, वो जाहिर है इन्हीं चीजों के अंदर, लेकिन फरिश्तों का भी यही मामला है कि मोमिन को देखते हैं कि कैसे इनाम और इकराम के साथ अल्लाह ताला ने इस मोमिन की रूह को हमें कब्ज करने के लिए कहा था, तो अब हम सिर्फ मोमिन को नहीं देखेंगे, हम उसके नाम अमाल को भी देखने का तमन्ना की तमन्ना रखते हैं कि क्या जहेज लेकर के आया है उस इस दुनिया से। ठीक है, तो ऐसा मामला होता है मोमिन के साथ मरने के बाद। ठीक है, तो जब ये ईमान वाले जो है ना, फिर वो तमन्ना रखते हैं उस वक्त की। ठीक है, वो फिर दुनिया से जाने में उनका सिर्फ ये मसला होता है कि ज़रा अमाल और ज़्यादा कर लें और अपने घर वालों के ईमान की हिफाजत की बंदोबस्त, ये उनकी फिक्र होती है सारी की सारी। वरना तो मरना तो उनके लिए इनाम है, मरना तो उनके लिए इनाम है अल्लाह ताला का, राइट। तो वो फिर मौत से फिर घबराते नहीं है इस वजह से कि जी मर जाएंगे तो फिर आगे पता नहीं जो है वो अजाब होगा उनके लिए। तो ये सारे मामला होते हैं ना, इसी वजह से तो वो फिर मरने की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि फिर हबीब से मुलाकात मरने के बाद ही हो सकती है, उससे पहले तो नहीं हो सकती। तो चुनाचे वो नाम अमल खोल कर दिखा दिया जाता है। मुख्तसरन आगे उनकी जजाए आखिरत का बयान है कि नेक लोग बड़ी आसाइश में होंगे, मसहरियों पर बैठे बहश्त के अजायब देखते होंगे, यानी जन्नत के अजायब अजीब अजीब चीज़ें देखते होंगे। ये शतहुल क्या है, इन्नल अब्रार लफी नईम अलल अराइक यंजुरून, बैठ के तकियों के ऊपर देखते होंगे। तारिफु फी वुजूहिम नफ़खतुन नईम, तो उसके बाद फरमाया कि तू उनके चेहरों में आसाइश की बशाशत फ्रेशनेस तू उनके चेहरों के ऊपर पहचानेगा, और उनको पीने के लिए शराब खालिस सर बमुहर जिस पर मुश्क की मुहर होगी मिलेगी, यानी ऐसी शराब होगी कि जिसका के जो उसका जो कंटेनर होगा उसके ऊपर मोहर लगी हुई होगी, उसके सर के ऊपर बहुत अरसे से मोहर लगी हुई होगी, यानी पक्की जबरदस्त शराब होगी लेकिन उसके ऊपर मुश्क की मोहर होगी, यानी उसके अंदर यानी बदबू वगैरह और सड़ान बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फरमाते हैं कि फल यतनाफसल मुतनाफिसून, के हिर्स करने वालों को ऐसी चीज़ की हिर्स करनी चाहिए। भाई दुनिया की जो चीज़ों की हिर्स करते हो, ठीक है, पहली बात तो तुम्हें मिलेंगे शायद बिल्कुल भी नहीं, जितनी भी हिर्स कर लो मिलनी मिलनी कुछ नहीं है तुम्हें उसमें से, बहुत थोड़ा सा मिलेगा शायद, उसके लिए भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या जतन उठाने पड़ेंगे, उल्टे सीधे लोगों के जूते चाटने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। फिर वो चीज़ तुम्हें मिल भी गई तो उस चीज़ के अपने अंदर इतने फॉल्ट्स होंगी, ठीक है, कि कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ, उसकी अपनी एक एज होगी जो कि कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर वो चीज़ ख़त्म ना भी हुई तो तुम तो ख़त्म हो जाओगे ना, ठीक है, तुमने तो बूढ़ा हो जाना है। एक तुमने अगर रोल्स रॉयस की गाड़ी ख़रीद भी ली जिसके लिए तुम हिर्स करते थे अपनी ज़िंदगी के 40 साल, तुमने हिर्स करी कि मैं रोल्स रॉयस ख़रीद लूँ, अब रोल्स रॉयस तुमने ख़रीद ली, अब ये कितना अरसा तुम्हारे पास रहेगी, नहीं, ठीक है, 2-3 साल के बाद फिर पुरानी हो जाएगी। फिर तुम इसकी आसाइश से कितना अरसा फ़ायदा उठा सकोगे, 15 साल 20 साल उठाओगे, फिर उसके बाद तुम्हारे जाने के वक्त आ जाएगा, रोल्स रॉयस इधर ही रह जाएगी, तुम जो है वो अपने कब्र में पहुंच जाओगे। तो ऐसी चीज़ों के पीछे हिर्स करना भी कोई हिर्स करना हुआ, ये कोई यानी काम की हिर्स हुई, तो हिर्स तो उन चीज़ों के लिए करो ना कि जो कि तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी और जिसके अंदर किसी किस्म की फॉल्ट का तस्वर ही नहीं है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं फल यतनाफसल मुतनाफिसून, हिर्स करने वालों को इसमें हिर्स करनी चाहिए कि हिर्स के लायक यही है, ख्वाह सिर्फ शराब मुराद ली जाए, ख्वाह कुल नेमाए जन्नत, यानी शौक और रगबत की चीज़ें, ये चीज़ ये नेमतें हैं, ना कि दुनिया की नाकिस और फ़ानी लज्जतें, और उनकी तहसील का तरीक नेक आमाल है, बस इसमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम ईमान की हिफाजत करें और फिर उसके बाद अपने नियतों की हिफाजत करें और अच्छी नियतों के साथ, सही नियतों के साथ नेक अमाल करें, जितना अल्लाह ताला हमें मौका दे उतना हम नेक अमाल करें। तो यही है हिर्स करना जन्नत की नेमतों के लिए। और इस शराब की आमेजश तस्नीम के पानी से होगी, अरब उमूमन शराब में पानी मिलाकर पीते थे, तो उस शराब की आमेजश के लिए तस्नीम का पानी होगा। आगे तस्नीम की शरह है कि यानी एक ऐसा चश्मा जिससे मुकर्रब लोग पानी पियेंगे, मतलब ये कि साबिकीन यानी मुकर्रबीन को तो खालिस पीने को उसका पानी मिलेगा और अस्हाबुल यमीन यानी अबरार को उसका पानी दूसरी शराब में मिलाकर मिलेगा, ठीक है, यानी अबरार जो है वो मुकर्रबीन से भी नहीं, साबिकीन ज्यादा पड़े हैं तो उनको खालिस पीने को उसका पानी मिलेगा, और जो उनके अलावा नेक लोग हैं जो कि हैं जन्नत में जाने वाले लेकिन मुकर्रबीन और साबिकीन के दर्जे पर नहीं पहुंचे, तो उन लोगों को फिर इसका पानी भी मिलेगा, यानी तस्नीम का पानी भी मिलेगा लेकिन दूसरी शराब में मिला करके मिलेगा, तो प्योर तस्नीम का पानी इनको नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होगा। तो फरमाया कि ये कज़ा फिर दुर्र मंसूर अन कतादा व मालिक इब्न हारिस व इब्न अब्बास व इब्न मसूद व हुज़ैफ़ा, और ये मोहर लगाना अलामत इकराम की है, वरना वहाँ ऐसी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। और मुश्क की मोहर का मतलब यह है कि जैसे कायदा है कि लाख वगैरह लगाकर उस पर लॉक, अच्छा लॉक है यहाँ पे मुराद इसकी, इनकी लॉक वगैरह लगाकर उस पर, या लाख सॉरी लाख लाख जो है वो शायद वो यानी जो जला करके ना इन चीज़ को जला देते हैं तो उससे जो राख बन जाती है तो उसको शायद लाख कहते थे। तो लाख वगैरह लगाकर उस पर मोहर करते हैं, या जो भी चीज़ होती है पिघला करके उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं किसी बोरी के ऊपर। आपने शायद पोस्ट ऑफिस वगैरह में अगर कभी इस तरह देखा हो तो वो होती है एक पिंक कलर की मटेरियल होता है, उसको जलाते हैं तो वो पिघलता है, तो पिघलने वाली हालत में ना उसको फिर बोरी के मुंह के ऊपर लगा देते हैं, तो वो फिर जब ठंडा होता है तो फिर वो बहुत टाइटली बोरी के मुंह को बंद कर देता है, तो उसको लाख कह देते हैं। तो फरमाया कि लाख वगैरह लगाकर उस पर मोहर करते हैं, और ऐसी चीज़ को तीने खिताम कहते हैं, खिताम मीनिंग मोहर। वहाँ शराब के बर्तन के मुंह पर मुश्क लगाकर उस पर मोहर कर दी जाएगी, यहाँ तक फरीकैन की जजाए उखरवी का अलग अलग बयान था। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग बयान हो गया। आगे मजमुए फरीकैन का मजमुआ हाल दुनिया और आखिरत मजकूर है, यानी जो लोग मुजरिम यानी काफिर थे वो ईमान वालों से दुनिया में तहकीरन, यानी अभी तो अलग अलग तस्करा हो गया, काफिरों का अलग तस्करा हो गया, मोमिनीन का अलग तस्करा हो गया, अब इन दोनों के आपस में जो जो इंटरेक्शन होती थी तो उसका तस्करा कर रहे हैं कि ये जो काफिर थे वो ईमान वालों से दुनिया में तहकीरन यानी हकारतन हंसा करते थे, और ये ईमान वाले जब उन काफिरों के सामने से होकर गुजरते थे तो आपस में ये काफिर यानी आंखों से इशारे करते थे, मतलब ये कि इनके साथ इस्तेहजा व तहकीर से पेश आते थे, और जब अपने घरों को जाते तो वहाँ भी उनका तस्करा करके दिल लगियाँ और तमस्खुर करते, यानी अपनी बीवियों के सामने डींगे मारते थे, इसको हम कहते हैं ना डींगे मारना, ये करते थे और तमस्खुर करते थे, मतलब ये कि गईबत और हुजूर, गईबत मतलब पीठ पीछे और हुजूर मतलब सामने, हर हालत में उनकी तहकीर और इस्तेजा का मामला रहता था। जैसे कि आजकल भी जी ये तो मौलवी है, ये तो ऐसा है और ये वैसा है, इस तरह का मजाक वगैरह कुछ लोग उड़ाते हैं, अलबत्ता हुजूर में इशारे चला करते हैं, यानी सामने जो है ना वो इशारों से बात करते थे, और गीबत में सराहतन तस्करे करते थे, और जब उनको देखते तो यूं कहा करते कि ये लोग यकीनन गलती पर हैं, क्योंकि कुफार इस्लाम को गलती पर समझते थे। जैसे आज भी जो है जो जो उलमा को या उलमा के जो जो फॉलोअर्स हैं उनकी जो मुखालफत करते हैं तो वो फिर कोई ना दलील ला करके मुखालफत करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई उनके सामने उनके पास कोई ना कोई रीज़न होता है, वो रीज़न जहाँ से भी लेकर के आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ जो है वो अकली रीजंस लेकर के आते हैं उलमा को गलत कर साबित करने के लिए, कुछ जो है वो नकली रीजंस लेकर के आते हैं उलमा को गलत साबित करने के लिए, और नकली से मुराद फेक रीजंस नहीं बल्कि नकली से मुराद कुरान और हदीस लेकर के आते हैं कि ये उलमा तो गलत कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो वन वे और दी अदर ये जो है वो ईमान वालों के साथ इस्तेहजा करते हैं और उनको गलती पर ही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये काफिर इन मुसलमानों पर निगरानी करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए, यानी उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए थी इनके पीछे क्यों पड़ गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज के दौर में भी बार बार यही समझाया जा रहा है कि अल्लाह के बंदो अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है तो खामोश रहो ना, ठीक है, बेशक तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, हम मानते हैं कि आज के दौर में बात समझना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कम अज कम जो है ये उलमा और उलमा के जो हिमायत करने वाले लोग हैं तुम उनकी उनके ऊपर मजाक तो ना करो ना, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो अपनी छोटी सी अकल से जो है वो दलायल निकाल निकाल कर कुरान और हदीस से इनके खिलाफ फिट करने की कोशिश तो ना करो ना, ठीक है, खामोश हो जाओ, बेशक वेट इंतजार कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारे बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, अभी बेशक नहीं समझ में आ रही, वक्त के साथ आ जाएगी समझ में, ठीक है, लेकिन ये जुबान तो बंद करके रखो ना जरा आपने, इसलिए कि जुबान चलाओगे तो जुबान चलाने से तो बंदा काफिर हो जाता है, ठीक है, वो तो सराहतन फिर इंसान काफिर हो जाता है जब इस किस्म की बातों के अंदर अपनी बेवकूफ़ी की समझ के मुताबिक थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर दे तो ईमान खत्म हो जाता है इससे। तो खामोश रहने में फिर भी एक 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 यानी सेफ्टी है, तो तुमको दरोगा बना के नहीं भेजा गया है, तुम अपनी फिक्र करो, उनके पीछे क्यों पड़ गए हो, बस इनसे दो गलतियां हुई, अव्वल अहले हक के साथ इस्तेजा, फिर अपनी इसलाह से बेफिक्री। सो आज क़यामत के दिन ईमान वाले काफिरों पर हंसते होंगे व सहरियों पर बैठे इनका हाल देख रहे होंगे। दुरे मंसूर में कतादा से मनकूल है कि कुछ दरीचे झरोके ऐसे होंगे जिनसे अहले जन्नत अहले नार को देख सकेंगे। ठीक है, तो क़यामत के दिन भी यानी जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे मौके आएंगे कि जिसमें कि अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नुम के दरमियान जो जो यानी पर्दा है ना, इस पर्दे को वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे, उठा नहीं देंगे कि नौजबिला जन्नत की ठंडक जो है वो जहन्नुम में पहुंचनी शुरू हो जाए या जहन्नुम की गर्मी जो है वो जन्नत में आनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ट्रांसपेरेंट बना देंगे, जैसे शीशे को कर दिया जाता है। ठीक है, अब बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ रही होती लेकिन नजर तो आ रहा होता है ना, तो इस तरीके से जब कर देंगे ना तो फिर ये मसहरियों पर बैठे उन काफिरों का हाल देख रहे होंगे, जिससे अहले जन्नत अहले नार को देख सकेंगे। बस उनका बुरा हाल देखकर बतौर इंतकाम के उन पर हंसेंगे, और उस वक्त जो है ना बतौर इंतकाम के हंसना जो है वो बुरी बात नहीं होगी। ये बुरी बातें यहाँ पर है, ठीक है, वहां पर ये बुरी बात नहीं होगी। आगे तकरीर है इस सजा की, यानी वाकई काफिरों को उनके किए का खूब बदला मिला। ठीक है, तो ये जो अल्लाह ताला पर्दा हटाएंगे या ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो इसका मतलब, इसका मकसद भी एक होगा। ठीक है, वो ये सिर्फ ये नहीं कि इनको हंसाना मकसूद हो ताकि ये इंतकाम के तौर पर हंसें, बल्कि उनके अंजाम को देख करके ना इनके अंदर यानी जन्नत वालों के अंदर जन्नत की कदर और बढ़ जाएगी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे और तस्बीह बयान करेंगे, राइट? क्योंकि उनके सामने बात होगी ना कि अगर हम नेकी ना करते, अगर हमें अल्लाह ताला माफ ना कर देते और हमें जन्नत ना देते तो फिर हम भी उधर होते। तो इससे फिर कैफियत जन्नत के मजे की कैफियत और बढ़ जाएगी। मारिफ मसाइल भी शुरू कर देते हैं, अगर किसी को सवाल है मिलाप कर लोग पूछें। मारिफ मसाइल में फरमाते हैं कि सूरह तफ़ीफ़ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल पर मक्की सूरत है। आम मसाइफ कुरान में इसी बिना पर उसको मक्की ही लिखा है। और हज़रत इब्न अब्बास, कतादा, मुक़ातिल और रहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के नज़दीक मदनी सूरत है, मगर इसकी सिर्फ 8 आयतें मक्की हैं। ठीक है, तो ये दो अकवाल इस सूरत के बारे में हैं हमारे उलमाए कराम के। इमाम नसाई ने हज़रत इब्न अब्बास रतान से रवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो देखा कि मदीना मुनव्वरा के लोग जिनके आम मामलात कैल यानी नाप के जरिए होते थे, वो इस मामले में चोरी करने और कम नापने के बहुत आदी थे। ठीक है, इन जनरल मदीना मुनव्वरा में ऐसे ही था। ठीक है, अब ईमान तो बहुत सारे लोग ले आए थे, लेकिन ईमान के बाद अमले सालेह इख्तियार करना और गुनाहों से बचना, तो इसमें वक्त लग जाता है। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो नातोल में चोरी कर रहे थे ना, ये काफिर थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये ईमान वाले भी हो सकते थे, लेकिन ईमान के बाद जो इस्लाह अहवाल होती है इसमें वक्त लगता है। ठीक है, इसके लिए आपको रिमाइंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए आपको इल्म की ज़रूरत पड़ती है, माहौल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बिल्कुल यही मामला वहाँ उस वक्त भी हुआ। ऐसा नहीं होता था कि बस इधर उन्होंने कलमा पढ़ा और इधर जो है वो सब चीज़ें ठीक हो गई। ठीक है, जन्नत तो हो जाती थी उनके ऊपर वाजिब, इसलिए कि ईमान की वजह से जन्नत वाजिब हो जाती है। ठीक है, लेकिन आमाल की इस्लाम में तो वक्त लगता है ना, ये तो एक प्रोसेस होता है। तो हमारे लिए भी कोई ऐसी यानी नई बात नहीं है कि जी हम तौबा तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद गुनाह फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। भाई, इसलिए कि गुनाह छोड़ने के लिए आपको बहुत कुछ यानी वक्त लगता है, टाइम, आपको माहौल की जरूरत पड़ती है, आपको जो वो इल्म की जरूरत पड़ती है, आपको एक एफर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यही मामला शुरू से चल रहा है, कोई उस वक्त डिफरेंट था और अब डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मामले में चोरी करने और कम नापने के बहुत आदी थे। इस पर ये सूरत वैलुल मुतफ़िफ़ीन नाजिल हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ये पहली सूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा पहुँचते ही नाजिल हुई। वजह ये थी कि अहले मदीना में ये रिवाज उस वक्त आम था कि जब खुद किसी से सौदा लेते तो नाप तोल पूरा पूरा लेते थे, और जब दूसरों को बेचते तो इसमें कमी और चोरी किया करते थे। इस सूरत के नाजिल होने पर ये लोग इस रस्म बद से बाज आ गए। ठीक है, ये फर्क है, अहवाल का फर्क नहीं है लेकिन रद जो रिस्पॉन्स है ना उसका फर्क है। ठीक है, कि उनके ऊपर जब अहकाम आते थे तो वो मान लेते थे उसको और रस्म बद से बाज आ जाते थे। हमारे ऊपर अहकाम आते हैं लेकिन हम बाज नहीं आते, हम मानते नहीं। और उसकी वजह क्या बनती है कि हम में और उनमें फिर ये अहवाल का फर्क है क्यों? ठीक है, उसकी भी तो एक कोई रीज़न होनी चाहिए ना, अगर आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इस सूरत के नाजिल होने पर ये लोग इस रस्म बद से बाज आ गए, और ऐसे बाज आए कि आज तक अहले मदीना नाप तोल पूरा पूरा करने में मारूफ और मशहूर है। ठीक है, अब ये अहले मदीना के जो जो दुकानदार होते हैं, इन उमूमी तौर पर तजुर्बा सबका यही रहता है कि वहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ही यानी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और ये मामला जो है वो बहुत ही चल रहा है वैसे ही मदीना मुनव्वरा के वासियों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, नहीं सोहबत में तो अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक भी होता था, ये तो फकत सोहबत नहीं हुई ना। तो फर्क ये होता था कि नहीं, जब इन लोगों ये लोग जब ईमान लेकर आते थे ना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, तो ये ईमान लाने के साथ साथ इस बात का अहद कर लेते थे कि अब आप जो हमें कहेंगे ना वो हम मानेंगे। ठीक है, हमने आपके सामने देखें ईमान जो जो यानी देखिए क्या इस्लाम लेकर के आते थे ना, इस्लाम, तो इस्लाम का मतलब पढ़ा है ना अभी आपने, असलमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन। ठीक है, तो असलमा युस्लिमु का क्या मतलब होता है, झुका देना, अपने आप को सुपुर्द कर देना, ठीक है, सरे तस्लीम खम कर देना। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपने सरे तस्लीम खम कर दिया अब आपका सारा मामला ठीक हो गया, बल्कि इसका मतलब क्या होता है कि अब जी हमने आपके सामने सबमिट कर दिया है, अब आप अहकाम दें हम उनको मानेंगे, आप कल को एक हुक्म देंगे हम उसको मानेंगे, परसों आप हमें दूसरा हुक्म देंगे हम उसको मानेंगे, तीसरे दिन के बाद हम आप अगर हमें तीन चार हुक्म एक साथ दे देंगे हम उन तीन चार हुक्मों को मानेंगे। ठीक है ना, सारे हुक्म आप अभी अभी हमें ना दें, अगर अभी सारे हुक्म दे देते हैं हम अभी सारे मान लेंगे, अगर आप ग्रेजुअली हमें हुक्म देते हैं हम ग्रेजुअली मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो कलमा तैयबा पढ़ लेना, तौबा कर लेना ना, तो ये तौबा उसी वक्त कामिल होती है जब आप सुपुर्दगी के लिए तैयार भी हो। ठीक है, तो सुपुर्दगी के लिए तैयार हो जाना जो है ना, अतात के लिए तैयार हो जाना, सुपुर्दगी के लिए तैयार हो जाना, ये कामिल ईमान की दलील होता है। ठीक है, हमारा मसला ये है कि हम कलमा जो है वो जुबान से तो पढ़ते हैं, हम अतात के लिए हम कन्विंस्ड ही नहीं होते, अतात के लिए हम तैयार ही नहीं होते अतात के लिए, इस वजह से अहकाम आते रहते हैं लेकिन हमारे ऊपर जूं भी नहीं रेंगती। ठीक है, हम टस से मस नहीं होते, अहकाम आ रहे हैं जी तौबा तो कर ली थी, शेख साहब से बैत तो कर ली है जी, शेख साहब के सामने कल मैं तौबा तो पढ़ ली है जी। ठीक है, लेकिन शेख साहब की माननी नहीं है हमने। ठीक है, तो इस वजह से ना फिर जब वो हमें बताते हैं कि जी आप अपनी जिंदगी में ये वाला गुनाह कर रहे हैं, इस गुनाह को छोड़ दें, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम जो है वो एज इफ नथिंग हैपेंड। ठीक है, तो ऐसा मामला उनके साथ नहीं था, उन्होंने अपने शेख के साथ जब तौबा करी थी ना तो फिर शेख साहब के हुक्मों के मुंतजर रहते थे कि जी अब हमने हमने माननी है। ठीक है, अब वो शेख साहब को कल जब अल्लाह ताला ने बताया कि जी ये लोग जो है वो नापने तोलने की कमी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो चलो जी इन लोगों को मेरी ये वाली आयत पढ़ करके सुना दो, तो जब शेख साहब ने आयत पढ़ करके सुनाई तो उन्होंने कहा जी तौबा, हमने छोड़ दिया इस बात को। ठीक है, उनका उसी तरीके से शराब का मामला एक बहुत बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है इसकी, कि शराब के आदी थे सारे के सारे, मक्का वाले भी और मदीना मुनव्वरा वाले भी, मक्का मुकरमा वाले भी। ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया तो इतना एडिक्टेड लोग जिनके मुआशरे की जड़ के अंदर शराब मौजूद थी, ठीक है, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। ठीक है, बेशक उसकी वजह से उनके ऊपर जो भी फिजिकल यानी नुकसान हुए होंगे, क्योंकि शराब की आदत हो जाने के बाद जब छोड़ते हैं तो इतना आसान भी थोड़ी होती है एडिक्शन को छोड़ देना, लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ दिया क्योंकि अब उन्होंने इरादा कर लिया था हुक्म मानने का। ठीक है, अतात का वो इरादा कर चुके थे, तो इस वजह से अतात करते थे। फिर वैलुल्लिल मुतफ़िफ़ीन, मुतफ़िफ़ीन तफ़ीफ़ से मुश्तक है कि जिसके मानी नाप तोल में कमी करने के हैं, और ऐसा करने वाले को मुतफ़फ़ कहा जाता है। कुरान करीम के इस इरशाद से साबित हुआ कि तफ़ीफ़ करना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वैल कर दिया ना, ये जो फिका के अंदर होता है ना कि जी फलानी चीज़ हराम है और फलानी चीज़ जो है वो मकरूह है और फलानी चीज़ जो है वो मुस्ताहब है, ये कहाँ से आया, कोई अल्लाह ताला ने इस तरह की लिस्ट को थोड़ी उतारी थी कि हराम की जो है वो ये लिस्ट है और मकरूह की ये लिस्ट है और मुस्ताहब की ये लिस्ट है, ऐसी तो कोई लिस्टें नहीं उतरी ना ऊपर से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई ऐसी लिस्टें नहीं बनाई सहाबा को कहा कि जी कलम पेंसिल संभालो, कलम और कागज़ संभालो और मैं तुम्हें लिस्टें लिखवा रहा हूँ कि जी ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर कहाँ से आ गई ये लिस्ट, लिस्ट कैसे आ गई कि इस्तिंबात करने वालों ने, इज्तिहाद करने वाले जो मुज्तहिदीन थे, जिनको फुकाहा भी कहा जाता है, उन्होंने कुरान को सामने रखा, उन्होंने पूरी हदीस के लिटरेचर को सामने रखा, और उन्होंने देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला वैल फरमा रहे हैं, या जिसके ऊपर अल्लाह ताला किसी और शक्ल के अजाब का तस्करा कर रहे हैं, या अल्लाह ताला जो है वो क्लियरली जो है वो अपने गजब का तस्करा कर रहे हैं, नाराजगी का तस्करा कर रहे हैं। तो जिन जिन चीज़ों के ऊपर इस तरीके से सराहतन कुरान में आ गया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही और यानी जिसको कहते हैं मुकर्रर हदीस मुतवातर हदीस के अंदर आ गया, उन चीज़ों को उन्होंने हराम की लिस्ट में लिख लिया, ठीक है। और जिन चीज़ों के ऊपर डिसलाइकनेस का एक मामला आया था और उसके ऊपर ऐसा अजाब सराहतन डिस्कस नहीं था, मेंशन नहीं था, तो उसको जो है वो उन्होंने मकरूह की लिस्ट के अंदर लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से फुकहा ने ये लिस्टें बनाई हैं, ठीक है। वेल क्या है ये तो याद आगे आता है, या वेल की तफसीर जो है वो एक तो बर्बादी का मतलब होता है इसका, दूसरा ये कि जहन्नुम की एक वादी का नाम वेल है, जो कि खास खास गुनाहों के ऊपर कुफार को उस वादी का अजाब होगा, जैसे कि वैलुल्लिकुल्लुमजा, तो हुमजा और लुमजा करने वालों के लिए भी वैल है, उसी तरीके से तफफीफ करने वालों के लिए भी वैल है, तो दोनों उसकी तशरीहात तफसीर में मौजूद हैं। अब फरमाते हैं कि एक्चुअली टाइम तो हमारा हो चुका है, तो कल यानी परसों इंशाल्लाह इस हेडिंग से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई सवाल है? ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो जज़ाकअल्लाह क्लास अटेंड करने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।